दिन भर 23 अप्रैल रविवार सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज पहले दौर का मतदान, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, 50% से ज्यादा लोगों ने किया मतदान। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के सांसद पर पुलिस अधिकारी के घर पर हमले का आरोप, सांसद ने खुद को कहा बेकसूर।
एसएसपी वहां के मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, घर पे तो अटैक हुआ ही नहीं, कोई अटैक ही नहीं हुआ।
साप्ताहिक कार्यक्रम संग संग गुनगुनाओगे में आज यतीन्द्र मिश्रा सुनाएंगे शंकर जयकिशन की संगीत समीक्षा।
आंध्र प्रदेश और गुजरात के प्रचलित संगीत और लोक धुनों को जोड़कर एक ऐसे सामंजस्य की परिकल्पना हुई जो बाद में दशकों तक इस जोड़ी का सिग्नेचर ट्यून बनी रही।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। फ्रांस में अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव मैदान में कुल 11 उम्मीदवार हैं, इनमें से 4 के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। ये हैं मेरिन लपेन, फ्रांसवा फियो, इमैनुअल मैक्रो और जा लुक मेलांशो। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के दौरान 50,000 पुलिसकर्मियों और 7,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। स्थानीय समय के मुताबिक रात 8 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यमन के दक्षिणी शहर अदन में हुए एक धमाके में 7 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्टों के मुताबिक इस धमाके में 15 अन्य लोग घायल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एक सैन्य ठिकाने पर लैंड माइंस को लॉरी से उतारा जा रहा था, तभी उनमें धमाका हो गया। हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष कर रही यमन की सेना का अदन प्रमुख गढ़ है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के प्रवक्ता शाह हुसैन मुर्तजावी ने कहा है कि शुक्रवार को मजार शरीफ के करीब एक सैन्य ठिकाने पर हुए हमले को लेकर जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक तालिबान के इस हमले में कम से कम 140 सैनिकों की मौत हो गई। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा,
रईस जमहूर हिदायत दादन के हम अज लिहाज तकनीकी अमनियती व हम अज सायर अबाद रुईदाद व बररसी गिरफ्ता शवाब
बगुने की तकनीकी जांच का आदेश दिया है। जांच के नतीजे देश और राष्ट्रपति दोनों को मंजूर होंगे। ये थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया की मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिका के एक नागरिक को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्टों के मुताबिक ये शख्स चीन की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें शुक्रवार को प्योंगयांग एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि प्रवासियों को रखने के लिए बनाए गए कई केंद्र यातना केंद्रों की तरह हो चुके हैं। उन्होंने सरकारों से कहा है कि वो प्रवासियों को ऐसे केंद्रों में नहीं रखें। रोम में प्रवासी परिवारों से मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रवासियों की मदद करने वाले इटली और ग्रीस जैसे देशों की सराहना की। उन्होंने इस दौरान बीते साल ग्रीस में एक मुस्लिम प्रवासी से हुई बातचीत का जिक्र भी किया। पोप ने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या वो कैंप से बाहर निकल पाए। कई शरणार्थी शिविर यातना केंद्रों की तरह हो चुके हैं। कई केंद्रों में ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं। उनका स्वागत करने वाले उदार लोगों को अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते मानवाधिकारों से ज़्यादा अहम हो चुके हैं। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दिल्ली में आज तीनों नगर निगमों की 270 सीटों के लिए वोट डाले गए। नगर निगम में कुल 272 सीटें हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के हवाले से बताया कि करीब 54% लोगों ने वोट डाले। उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम मिलाकर कुल 2,500 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निगम चुनाव के नतीजे 26 अप्रैल को घोषित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की बैठक में कहा कि राज्य सरकारों को बिना देर किए जीएसटी के लिए विधायी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भीम ऐप और आधार के इस्तेमाल से राज्यों के खर्चे कम होंगे। उन्होंने राज्य सरकारों से साल 2022 के लिए लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम करने को कहा। अमरीकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस अफ्रीकी देश जिबूती के दौरे पर हैं। अफ्रीका में अमरीका का इकलौता सैन्य ठिकाना जिबूती में ही है। अमरीका के सैन्य ठिकाने के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन भी सैन्य ठिकाना बना रहा है। इसे लेकर अमरीका कई बार चिंता जाहिर कर चुका है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिन भर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। आम तौर पर रविवार का दिन सूना सूना और अलसाया दिखता है, लेकिन एक तरफ जहां दिल्ली में एमसीडी चुनाव ने मौसम की गर्मी बढ़ा रखी है, तो दूसरी तरफ दुनिया की नज़रें फ्रांस पर टिकी हैं, जहां लोग अपना अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट दे रहे हैं। दिल्ली से पहले आइए फ्रांस का रुख करते हैं, जहां राष्ट्रपति चुनाव में आज पहले दौर का मतदान हो रहा है। कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसमें धुर दक्षिणपंथी से लेकर मध्यमार्गी और धुर वामपंथी भी शामिल हैं। हालांकि चुनावी सर्वेक्षण बता रहे हैं कि इनमें से कोई भी फ्रांस के 50% वोट हासिल करने की स्थिति में नहीं है, और तब फ्रांस के कानून के मुताबिक दूसरे दौर का मतदान कराना पड़ेगा, और इस दौर में 2 सर्वाधिक वोट हासिल करने वालों के बीच मुकाबला होगा। वरिष्ठ पत्रकार रणवीर नैयर पिछले दिनों फ्रांस में थे और चुनावी गहमा गहमी को बड़े करीब से देखकर कल ही भारत लौटे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं रणवीर नैयर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि आज पूरे दिन जो वोटिंग हुई है, जो आपने देखा है, वो उसको किस तरह से आप वर्णन करेंगे, उसका किस तरह से उसका ब्यौरा देंगे? जी,
अगर संक्षेप में कहा जाए तो यही कहूँगा कि सरकारी महकमे को आज के चुनाव से काफी संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि पहले लग रहा था कि शायद कोई आतंकवादी हिंसा या हमला हो सकता है, क्योंकि काफी खबरें फैली थी कि इस्लामिक स्टेट इस चुनाव के दिन ही कुछ अटैक प्लान कर सकता है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह रही है कि पिछले 4 दशकों में सबसे ऊंचा मतदान अब तक का हुआ, जो 12 बजे तक जो काउंटिंग की गई थी मतदानों की, उस हिसाब से 29% के आसपास मतदाताओं ने वोट डाले थे
जी,
जो कि 1960 से लेकर आज तक का सबसे रिकॉर्ड रहा है, तो काफी पॉजिटिव रहा है फ्रांस के लिए
जी। रणवीर, जो 11 प्रमुख उम्मीदवार हैं, उनमें से उम्मीद की जा रही है कि, मतलब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद कोई 50% वोट हासिल नहीं कर पाएगा, तो कौन लोग हैं जिनको लग रहा है कि जो फ्रंट रनर हो सकते हैं, जो ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं?
देखिए, 11 में से 4 को ही गिना जा सकता है जिनकी कोई उम्मीद हो सकती है दूसरे राउंड में आने की। इसमें इमैनुअल मैक्रों हैं, जो कि पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, उसके अलावा फ्रांसवा फियो हैं, जो कि मुख्य अपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन के कैंडिडेट हैं, जो कि पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके थे निकोला सार्कोजी के दौरान। उसके बाद दक्षिणपंथी मारीन लपेन, जो कि फ्रांस नेशनल की लीडर हैं, वो और वामपंथी के जॉन लुक मेलांशों, इन 4 कैंडिडेट्स को ही एकदम सीरियसली माना जा रहा है कि इन चारों में से कोई भी आ सकता है। क्योंकि
क्या क्या इस बार के मुद्दे क्या प्रमुख रूप से रहे, क्योंकि सुरक्षा तो एक बड़ा मसला सुनने में आ रहा है, इसके अलावा क्या मुद्दे हैं?
इकोनॉमी की हालत काफी फ्रांस में खस्ता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, और माइग्रेशन, ये 3 मुद्दे जो हैं, इन्हीं पे सब कैंडिडेट्स ने अपना अपना पोजीशन बनाई है और अलग अलग सॉल्यूशंस प्रपोज किए गए हैं। अब देखना ये है कि मतदाता किस सॉल्यूशन को अपनाते हैं।
रणवीर नैयर, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और हम अपने अगले कार्यक्रमों में भी आपसे इस पर बातचीत करते रहेंगे जब तक कि ये चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये रणवीर नैयर थे जिनसे हम बात कर रहे थे, कल ही ये लौटे हैं फ्रांस से दिल्ली। और ये तो हुई फ्रांस की बात, अब आइए ज़रा दिल्ली के चुनाव पर भी नज़र डाल लें। कुल 3 हिस्सों में बटे दिल्ली नगर निगम की कुल 270 सीटों के लिए आज चुनाव हुआ। सुबह से ही टीवी चैनल पर जो तस्वीरें दिख रही थी, उनमें सभी पार्टियों के प्रमुख लोगों को वोट डालने के लिए बूथों पर जाते देखा गया। कई लोगों ने तो अपनी तस्वीरें ट्वीट भी की हैं और वो उंगलियों में दिखा रहे थे कि जो स्याही लगी हुई है। नितिन श्रीवास्तव जो है हमारे BBC संवाददाता, वो इस प्रक्रिया को देख रहे थे, आज इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। नितिन, जरा पूरे दिन का हाल बयां करिए कि कैसे वोटिंग हुई और क्या कुछ हुआ।
निखिल, दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव थे MCD वाले, वो वोटिंग मतदान के दिन भी उतने ही ड्रामेटिक, उतने नाटकीय रहे जितने वो पिछले दिनों की कैंपेनिंग के लिए रहे, और शायद पिछले 15 सालों के में ये पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली के MCD चुनाव में, जिसमें पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि पिछले 15 सालों में 5 में से 4 में से 3 बार भाजपा जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है सीटों पर, और जाहिर है एक एंटी इनकम्बेंसी का डर भी था शायद भाजपा को, तो भाजपा ने पूरी जान लगा दी थी और उसके नतीजे से प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेके हर कोई इसकी बात कर रहा था। लेकिन जब आज मतदान हुआ तो अरविंद केजरीवाल, जो उनकी आम आदमी पार्टी जो अब दिल्ली पर काबिज है, जाहिर है उनकी निगाहें दिल्ली MCD पर भी हैं, उन्होंने कुछ एक ट्वीट करके माहौल को, मतदान को और दिलचस्प बनाया। उन्होंने कहा कि डेंगू को हटाएंगे, तमाम चीजें करेंगे, लेकिन साथ में कहा कि EVM में गड़बड़ी की बात फिर से की तरफ उन्होंने इशारा किया। उससे और एक दिलचस्पी आई, अगर आंकड़ों की बात करें तो 4 बजे के आसपास तक जो सरकारी आंकड़े आए थे उस दौरान करीब 55 लाख से ज्यादा मतदाता जो थे अपना वोट डाल चुके थे। कुछ इलाके, दो ऐसे इलाके भी रहे जहां पर मौत के कारण मतदान को स्थगित करना पड़ा, लेकिन दावा सभी का यही है कि पक्ष पलड़ा उन्हीं का भारी है। लेकिन अभी जो है दिल्ली की जनता ने पिछली बार जो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एक तरह से आम आदमी पार्टी को ऊपर लाकर खड़ा कर दिया था, तो वो जनता बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और अब बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि इस बार एमसीडी किसकी झोली में रहेगी।
जी नितिन, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में साफ सफाई से लेकर बुनियादी निर्माण में एमसीडी की बड़ी हिस्सेदारी है और स्वास्थ्य सेवाओं में भी, और अब तक ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती रही। पिछले 2 बार से यानी 10 साल में इस पर बीजेपी का कब्जा रहा और इस बार चुनाव मैदान में तीसरी बड़ी ताकत है आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में भारी बहुमत से जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुई है। चुनाव और उसके नतीजों का विश्लेषण करने के लिए मैंने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से बात की और सबसे पहले पूछा कि इस बार ये चुनाव इतने अहम क्यों हो गए हैं।
आमतौर पर तो स्थानीय मुद्दों को लेकर के या नगर पालिकाओं के या नगर महापालिकाओं के जो चुनाव होते हैं उनका कोई बड़ी राजनीति से रिश्ता नहीं देखा जाता, पर पिछले कुछ दिनों में ग्रैंड मुंबई नगर महापालिका का चुनाव, इसके अलावा ओडिशा में कुछ स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, तो इसको लेकर के एक प्रकार की राष्ट्रीय समझ पैदा हुई कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश महाराष्ट्र में भी हो गया है या ओडिशा में भी हो रहा है। तो राजनीति को राष्ट्रीय नजरिए से देखने के कारण एक कारण तो ये लगता है। दूसरा दिल्ली का कारण यह है कि दिल्ली में पिछले 3 वर्षों में कहिए कि जो आम आदमी पार्टी का जब से उद्भव हुआ है एक नए किस्म की राजनीति दिल्ली से शुरू हुई है, तो वो राजनीति अब एक बड़े निर्णायक से मोड़ पर आ गई है। तो इसलिए भी लोगों की निगाहें दिल्ली पर हैं कि क्या वो राजनीति अभी आगे जाने वाली है या उसमें कोई कोर्स करेक्शन होने वाला है या वो समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही है। और तीसरी जो बात मुझे लगती है वो ये कि दिल्ली के नगर निगम के चुनाव अगर स्थानीय मुद्दों से हटकर हो रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है और मोदी की लहर को लेकर के बात हो रही है, तो इसलिए तीसरा मुद्दा इसे और राष्ट्रीय बनाता है कि यहाँ पर स्थानीय या लोकल इश्यूज के बजाय मोदी के नाम का चुनाव हुआ।
अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए इस चुनाव को बड़ा निर्णायक कहा जा रहा है, आपको लगता है ऐसी कोई बात है?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में अन्ना हजारे आंदोलन के कारण एक जमीन बन गई थी और दिल्ली में ही ज्यादातर उसकी आधार भूमि बनी, दिल्ली में ही उसके ज्यादातर बड़े कार्यकर्ता थे। लेकिन दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षा में पंजाब और गोवा को जीतने का कार्यक्रम और शामिल हो गया और पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन पंजाब में नहीं कर पाई जितनी अपेक्षा थी और गोवा में काफी खराब प्रदर्शन रहा। तो इसलिए केजरीवाल जी कहिए या आम आदमी पार्टी कहिए, उनके लिए अब एक परीक्षा का एक और बड़ा या बल्कि लगभग मेरे अनुमान से आखिरी मौका है कि यदि वे एमसीडी के चुनाव में भी जीत जाते हैं तब तो मान लिया जाएगा कि दिल्ली कम से कम उनकी मजबूत आधार भूमि है, पर यदि वे एमसीडी में भी हार जाते हैं तब फिर वो कमजोर होती जाएगी उनकी जो जमीन।
कांग्रेस के लिए कितना अहम देखते हैं आप इसे?
कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में हार जाने के बाद और बाकी शेष भारत से भी कमजोर होने के बाद कांग्रेस के लिए एक बड़ी अच्छी स्थिति नहीं रही। दूसरा ये कि हाल में आपने देखा कुछ बड़े नेता कांग्रेस के छोड़ करके या तो जा रहे हैं या गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए थोड़ा उथल पुथल वाला सा हिसाब रहा। लेकिन अभी जो राजौरी गार्डन विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी ने दूसरा स्थान प्राप्त करके ऐसा एक लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की जमीन कमजोर हो रही है या हट रही है तो कांग्रेस पार्टी शायद उसको हासिल करना चाहती है। तो भले ही वो दूसरे स्थान पर ही हो या अगर वो कोशिश तो पहले स्थान पर आने करेगी, लेकिन अगर एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर भी आ गई तो वो उसको अपनी सफलता मानेगी और इस प्रकार से वो रिवाइवल जो एक शब्द होता है उसको वो हासिल करने का प्रयास करेगी।
वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी कर रहे थे दिल्ली के एमसीडी चुनाव का विश्लेषण। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर, निखिल रंजन के साथ।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
खबर उत्तर प्रदेश से है कि वहां सहारनपुर में पिछले दिनों शोभा यात्रा निकालने और फिर उस पर हुए पथराव को लेकर कथित विवाद के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने एसएसपी आवास के भीतर घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, ये आरोप लगे हैं। आरोप ये है कि ये लोग बीजेपी सांसद राघव लखनपाल का इन लोगों को समर्थन हासिल था। स्थानीय मीडिया में खबर आ रही है कि एसएसपी आवास के भीतर लोगों के घुसने के कारण एसएसपी का परिवार अभी तक डरा हुआ है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने इस पर बातचीत की है और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिलनवाज पाशा। दिलनवाज, क्या खबर है इस बारे में?
जी, गुरुवार को शोभा यात्रा निकाली जानी थी, अम्बेडकर शोभा यात्रा, जिसकी परमिशन नहीं थी आयोजकों के पास। सांसद उसका नेतृत्व कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने, जो दूसरे संप्रदाय के थे, उस पर कहा जा रहा है कि पथराव किया। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था। सांसद का आरोप है कि एसएसपी वहां से भाग गए और शोभा यात्रा नहीं निकलने दी। वहीं एसएसपी का कहना है कि उनके घर पर तोड़फोड़ की गई और उनके बच्चे भी डर गए हैं। सुनते हैं एसएसपी लव कुमार ने हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र से क्या कहा।
घर में 700-500 लोग घुस जाएंगे तो बच्चों को लगभग प्रभावित है। पुलिस वालों के घर वाले वैसे भी थोड़ा मजबूत होते हैं। किसी के लिए भी शॉकिंग होगा, किसी घर में 400-500 आदमी अकेले में घुस जाए तो इट विल टेक फोर टाइम टू रियलाइज कि एक्चुअली वो कह रहा है।
वही जो सांसद हैं राघव लखनपाल, उनसे कुछ देर पहले मैंने बात की थी। उनका कहना है कि एसएसपी लव कुमार अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं और अपने बच्चों के पीछे ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल उनको कर रहे हैं अपनी जो नाकामयाबी है उसको छुपाने के लिए। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
वो एसएसपी वहां के मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं कि उनके घर पे अटैक हुआ और परिवार उनका बंधक बनाया गया इत्यादि इत्यादि। घर पे तो अटैक हुआ ही नहीं, कोई अटैक ही नहीं हुआ। हम लोग तो वहां गए थे उनके कैंप ऑफिस उनसे ये पूछने के लिए कि आप क्यों भाग आए हैं घटनाक्रम से और हमें क्यों नहीं न्याय दिला रहे। तो ये है कि क्योंकि कप्तान की एसएसपी की स्वयं की नाकामी है, उस नाकामी को वो कवर अप कर रहे हैं अपने परिवार को एक शील्ड एक कवच के रूप में प्रयोग करके।
ये थी सहारनपुर की बात और अब चलते हैं आगरा, जहां पुलिस पर ये आरोप लगा है भाजपा विधायक के नेतृत्व में पुलिस पर हमला हुआ है, पुलिस की बाइक तोड़ दी गई है। थोड़ी देर पहले हमने एसएसपी प्रतिंदर कुमार से बात की थी, उनका कहना है कि 14 हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और बाकी को पकड़ने के लिए दबिशें दी जा रही हैं।
तो उत्तर प्रदेश में दो घटनाएं हुई हैं जहां पुलिस कर्मियों पर हमले की बात सामने आ रही है। ये थे दिलनवाज पाशा, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब वक्त हो चला है साप्ताहिक कार्यक्रम संग संग गुनगुनाओगे का। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन डाहिया भाई पंचाल की मित्रता ने दोनों को मिलाकर जिस शंकर जयकिशन युग की शुरुआत की, उसका साम्राज्य 1949 से 1969 के बीच पूरे 20 वर्षों का लंबा सुरीला दौर रचता हुआ सिने इतिहास में दर्ज है। आज इसी सुरीले सफर की समीक्षा आपको सुना रहे हैं यतिंद्र मिश्र संग संग गुनगुनाओगे में। कार्यक्रम तैयार किया है मोहनलाल शर्मा ने।
संग संग गुनगुनाओगे, कला समीक्षक यतिंद्र मिश्र के साथ।
हिंदी फिल्म संगीत के सबसे सदाबहार संगीतकार जोड़ी के रूप में आज भी अगर किसी को याद किया जाता है तो वे शंकर जयकिशन हैं।
बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
ये संगीतकार जोड़ी अपनी शुरुआत पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर से करती है, जहां शंकर एक तबला वादक की हैसियत से नौकरी करते थे। इसी थिएटर में रहते हुए शंकर ने सितार बजाना भी सीखा था और पृथ्वी में आने से पहले शंकर ने अपने किशोर वय के दौरान महफिलों में तबला बजाने वाले उस्ताद बाबा नसीर खां से ये वाद्य सीखा था।
झनक झनक तोरे बाजे पाए लिया, झनक झनक तोरे बाजे पाए लिया, प्रीत के गीत सुनाए पाए लिया, प्रीत के गीत सुनाए पाए लिया, झनक झनक तोरे बाजे पाए लिया।
इसी थिएटर में जयकिशन को शंकर लाए और वे वहां पर हारमोनियम के टीचर के रूप में नियुक्त हुए। शंकर और जयकिशन की मित्रता ने सांगीतिक अर्थों में भी दो भिन्नताओं को एक ऐसे सामान्य धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसमें यह जोड़ी एक सदाबहार जोड़ी के रूप में सर्वप्रतिष्ठित हो सकी। इस जोड़ी ने जिसमें एक ओर तबला था और दूसरी ओर हारमोनियम, वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के शंकर थे और गुजरात के जयकिशन। आंध्र प्रदेश और गुजरात के प्रचलित संगीत और लोकधुनों को जोड़कर एक ऐसे सामंजस्य की परिकल्पना हुई जो बाद में दशकों तक इस जोड़ी का सिग्नेचर ट्यून बनी रही।
रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया,
मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको। शुभ दिया
ओ रमैया बसा भैया रमैया बसा भैया रमैया बसा भैया रमैया बसा भैया।
शंकर जयकिशन की सफलता की शुरुआत आर के बैनर की बरसात से होती है, जब 1949 में वे कुछ इस ढंग से अपनी धुनों के साथ पूरे सिनेमा जगत के संगीत पटल पर छा जाते हैं। और यही वो गीत था जिसने लता मंगेशकर को भी अपनी सफलता की कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एक बारगी पंख दे दिए थे।
हवा में उड़ता जाए मोर लाल दुपट्टा मलमल का जी मोर लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी।
इस जोड़ी की हर मशहूर फिल्म का नाम ले पाना तो नामुमकिन लगता है क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है, मगर यहाँ हम कुछ ऐसी फिल्मों की सिग्नेचर धुनों को आपको सुना रहे हैं जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग सके कि वे वाकई कितने मशहूर थे और वर्षों तक या ये कहें दशकों तक उनका जादू कम नहीं हुआ।
आवारा हूं या गर्दिश में हूं आसमान का तारा हूं आवारा हूं
तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू प्यार से फिर क्यों डरता है दिल
कहता है तेरा रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल
एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव में रहने दो।
ये शायद सिनेमा के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब सफलता की शर्त संगीत की कसौटी पर शंकर जयकिशन हो चले थे। राज कपूर के बैनर में संगीत की जो टोली काम कर रही थी उसमें शंकर जयकिशन के साथ गीतकार के रूप में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र और पार्श्व गायक गायिकाओं के रूप में लता मंगेशकर और मुकेश की जोड़ियों ने कुछ ऐसा मील का पत्थर सरीखा रच दिया था कि हर दूसरी फिल्म का गाना कुछ इस तरह होता जा रहा था। ये देखना भी कम दिलचस्प नहीं है कि इस संगीतकार जोड़ी के यहाँ ऑर्केस्ट्रेशन का काम जबरदस्त है और उसी के साथ साथ हल्के फुल्के ढंग से मेलोडी प्रधान गीतों के लिए ये जोड़ी विख्यात रही। आप यदि बरसात की लोक धुनों पर आधारित गीतों को देखें तो दूसरी समय बसंत बहार और आम्रपाली की शुद्ध शास्त्रीयता में भी डूब डूब जाएंगे। रोमानियत और प्रेम के सरोकार रचने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर शंकर जयकिशन ही हुए, फिर चाहे वो प्रणय युगल गीत हो और चाहे एकल गीत, हर जगह उनकी दस्तखत एकदम सटीक थी। ऐसे में आप मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में या मुकेश की आवाज़ में कोई भी गीत सुनेंगे तो इस बात से बार बार झूमेंगे कि कैसे आज से 60-70 बरस पूर्व शंकर जयकिशन ने रोमानियत का एक सुनहरा दौर रच दिया था। ये दत्ताराम ही थे जो शंकर जयकिशन की फिल्मों की धुनों में कहरवा की एक नई शैली को लेकर आए, जिसके कारण आज भी यह ताल सिनेमाई भाषा में दत्ताराम ठेका कहरवा कहलाता है।
जब से लागी तो से नजरिया नस नस में
शंकर जयकिशन की धुनों में एक साथ उस समय के जज्बात, लय, ताल, अल्फाज, शोखी, रंग, संगीत, गमक, मीण, मुरकी और ढेरों चीज़ों को आपस में मिला हुआ देख सकते हैं। ऐसी धुनें जिसमें कभी लता मंगेशकर की वेदना अपने मर्म स्पर्शी स्तर पर गूंजी है, जैसा इस तरह इस गीत में। ये संगीतकार जोड़ी अपने समय में कितना आधुनिक संगीत रचती थी, ये इस बात से भी परखा जा सकता है कि कैसे उनकी फिल्मों में अलग अलग वाद्यों को अपने समय के महत्वपूर्ण वादकों ने अंजाम दिया। जब हम उनके आधुनिक संगीत की समझ को परखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरह शंकर का पियानो अनाड़ी में, हजारा सिंह के इलेक्ट्रॉनिक गिटार को शरारत में, मनोहारी सिंह के सैक्सोफोन को आरजू में, चिक चॉकलेट के ट्रम्पेट को दिल अपना और प्रीत पराई में, बलसारा के हारमोनियम को दिल एक मंदिर में तथा गुड़ी सिरवई के एकॉर्डियन को चोरी चोरी में थिरकता हुआ आसानी से पा सकते हैं। शास्त्रीय और लोक संगीत के बीच में गमन करते हुए बेहद ऊंची पट्टी के कुछ सुघर गीतों को बनाते हुए और ऑर्केस्ट्रेशन की सबसे सदाबहार अनुपातिक संयोजन के लिए SJ यानी शंकर जयकिशन को हमेशा याद किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शंकर जयकिशन के संगीत की अपनी बनक में एक खास किस्म का नयापन और मदमस्त करने वाली कोई बात अवश्य थी जो उनके द्वारा संगीतबद्ध गीतों को अलग पायदान पर खड़ा करती हुई मिलती है।
रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी
हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में संगीतकार जोड़ियों की जो परंपरा रही है, जिसमें हुसनलाल भगतराम, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकार मौजूद रहे हैं, उसमें सर्वाधिक सफलता और पॉपुलैरिटी शंकर जयकिशन के खाते में ही आई है। इसे एक धुन को सुनते हुए इस बात को आसानी से महसूस किया जा सकता है।
सजनवा बैरी हो गए चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, भागना बांटे कोई, करमवा बैरी हो गए हमारा।
तो ये था इस हफ्ते का संग संग गुनगुनाओगे। यतीन्द्र मिश्र से ये कार्यक्रम आपने सुना और कार्यक्रम को प्रोड्यूस किया था, बनाया था मोहनलाल शर्मा ने। इस पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। और अब कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। फ्रांस में अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव मैदान में कुल 11 उम्मीदवार हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यमन के दक्षिणी शहर अदन में हुए एक धमाके में 7 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा है कि शुक्रवार को मजार शरीफ के करीब एक सैन्य ठिकाने पर हुए हमले को लेकर जांच की जा रही है। दक्षिण कोरिया की मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिका के एक नागरिक को हिरासत में ले लिया है। इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि प्रवासियों को रखने के लिए बनाए गए कई केंद्र यातना केंद्रों की तरह हो चुके हैं। उन्होंने सरकारों से कहा है कि वह प्रवासियों को ऐसे केंद्रों में नहीं रखें। BBC समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया वात्सल्य राय ने और आज स्टूडियो संभाला है राजेश चौहान ने। आपसे कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरें देखनी है तो bbchindi.com पर आइए। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।